नमस्कार। आज हम जिस किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं वो कोई सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि एक पहेली है, एक एहसास है। हम बात कर रहे हैं जैम्बियन अमेरिकी लेखिका नामवाली सरपेल के उपन्यास द फरोज की। सरपेल आज के दौर की एक बहुत जरूरी आवाज है और ये उपन्यास दुख, याददाश्त और सदमे की दुनिया में हमें बहुत गहरे ले जाता है और इसका अंदाज भी काफी अलग है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये उपन्यास हमें दुख के बारे में कुछ बताता नहीं बल्कि उसे महसूस करवाता है।
और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे वाक्य से होती है जो मुझे लगता है पूरी किताब का सार है। लेखिका कहती हैं, मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहती कि क्या हुआ, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि कैसा महसूस हुआ। ये लाइन एक चाबी की तरह है जो हमें बताती है कि हम तथ्यों की नहीं बल्कि भावनाओं की एक भूल भुलैया में कदम रखने वाले हैं।
तो चलिए इसी भूल भुलैया के पहले मोड़ से शुरू करते हैं। कहानी हमें कहाँ ले जाती है?
कहानी हमें ले जाती है एक समुद्र तट पर। हम 12 साल की किसेंड्रा, जिसे प्यार से सी बुलाया जाता है, और उसके 7 साल के छोटे भाई वेन से मिलते हैं। एक आम सा दिन है, बच्चे खेल रहे हैं, लहरें आ जा रही हैं और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। वेन गायब हो जाता है।
गायब हो जाता है? मतलब कैसे? क्या वो डूब गया किसी ने?
यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है और उपन्यास इसका कोई एक जवाब हमें कभी नहीं देता। किसेंड्रा, जो उस घटना की अकेली गवाह है, उसके अपने दिमाग में उस पल की कई अलग अलग तस्वीरें हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती।
अच्छा।
हाँ, एक याद में वो अपने भाई को एक बड़ी लहर के नीचे जाते देखती है, दूसरी याद में वो बस भीड़ में कहीं खो जाता है, और एक तीसरी याद में वो शायद खुद उसे पानी में धक्का दे देती है। उसका दिमाग उसे कोई एक सच नहीं बताता।
इंतजार, मतलब कहानी की नींव ही एक ऐसी घटना पर रखी गई है जिसके बारे में खुद मुख्य किरदार को ही ठीक से नहीं पता। ये तो बहुत अजीब बात है। इसका उस परिवार पर क्या असर पड़ता होगा?
असर, आप कह सकती हैं कि वो परिवार बिखर जाता है, क्योंकि जब आपको पता ही ना हो कि मातम मनाना है या उम्मीद रखनी है, तो आप एक साथ दुख कैसे झेल सकते हैं। यहां हमें दुख से निपटने के दो बिल्कुल अलग, मतलब ध्रुवों जैसे रास्ते दिखाई देते हैं। माँ मार्था, वो अपने दुख को एक मिशन बना लेती हैं। वो द वेन फाउंडेशन शुरू करती हैं।
अच्छा, जो लापता बच्चों के लिए काम करता है।
बिल्कुल। और वेन के कमरे को एक म्यूजियम की तरह सहेज कर रखती हैं, जैसे वो कल ही वापस आ जाएगा। वो यादों को जंजीरों से जकड़ लेना चाहती हैं।
और पिता?
पिता विलियम, वो ठीक इसका उल्टा करना चाहते हैं। वो भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका मानना है कि अतीत के इस बोझ के साथ जिया नहीं जा सकता। वो उस बारे में बात करने से बचते हैं, उस कमरे की तरफ देखते तक नहीं।
तो एक तरफ है यादों को अमर बनाने की कोशिश
और दूसरी तरफ है उन्हें दफना देने की छटपटाहट।
और इन दोनों के बीच किसेंड्रा फंसी हुई है। वो उस घटना की गवाह है, लेकिन उसकी गवाही पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं। ये अपराध बोध तो उसे अंदर ही अंदर खा जाता होगा।
बिल्कुल। वो ना तो अपनी माँ की तरह सार्वजनिक तौर पर शोक मना पाती है और न ही अपने पिता की तरह सब कुछ भुला पाती है। वो अपनी टूटी फूटी विरोधाभासी यादों के साथ अकेली रह जाती है, और ये अकेलापन और अपराध बोध उसके पूरे वजूद को शिकल देता है। बड़े होने पर भी वो भावनात्मक रूप से खालीपन में जीती है। वो किसी से जुड़ नहीं पाती क्योंकि उसके जीवन की बुनियाद ही अनिश्चितता पटकी है।
तो क्या वो अपनी पूरी जिंदगी इसी साये में गुजार देती है?
वो साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी एक अजीब आदत बन जाता है। वो जहां भी जाती है, अनजानियों के चेहरों में अपने भाई वेन को तलाशती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जुनून है। हर उस लड़के या आदमी में जिसकी शक्ल थोड़ी भी मिलती जुलती हो, उसे अपने खोए हुए भाई की एक झलक दिखती है। ये दिखाता है कि उसका अतीत कभी बीता ही नहीं, वो हर पल उसके साथ, उसके वर्तमान में मौजूद है।
ये तो बहुत दर्दनाक आदत है। लेकिन क्या होता अगर उसे सच में कोई मिल जाए जो वेन जैसा दिखता हो? क्या कहानी इस हद तक जाती है?
वो इससे भी एक कदम आगे जाती है। उसे एक आदमी मिलता है जो न सिर्फ वैसा ही दिखता है जैसा उसने अपने बड़े हो चुके भाई की कल्पना की थी, बल्कि उसका नाम भी वेन है।
अरे वाह, ये क्या बात हुई! ये तो किसी फिल्म जैसा मोड़ है। तो क्या वो सच में उसका भाई है?
यही से उपन्यास हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देता है। उनके बीच एक बहुत ही गहरा, जुनूनी और खतरनाक रिश्ता शुरू होता है। ये रिश्ता कैसान्ड्रा के लिए उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना भी है और उसका सबसे बड़ा डर भी। वो लगातार इस कश्मकश में रहती है, क्या ये कोई चमत्कार है? क्या ये सच में उसका भाई है जो अपनी याददाश्त खो चुका था और अब लौट आया है, या ये कोई धोखेबाज है?
या फिर तीसरी और सबसे डरावनी संभावना कि कहीं वो खुद अपना दिमागी संतुलन तो नहीं खो रही, ये सब कहीं उसकी कल्पना तो नहीं?
ठीक यही सवाल। ये रिश्ता उसके पुराने जख्मों को फिर से कुरेद देता है। वो एक ऐसे भंवर में फंस जाती है जहां उसे समझ नहीं आता कि किस पर यकीन करे, इस आदमी पर या अपने दिमाग पर।
मैंने सुना है कि उपन्यास का दूसरा हिस्सा कुछ बहुत ही साहसिक करता है जो पाठक को पूरी तरह से हिला देता है, वो क्या है?
हाँ, उपन्यास का दूसरा भाग एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। कहानी का नजरिया अचानक बदल जाता है। अब तक हम सब कुछ कैसेंड्रा की आंखों से देख रहे थे, उसके डर और उसकी उम्मीद को महसूस कर रहे थे, लेकिन अब कहानी का कैमरा घूम जाता है और उस रहस्यमयी वयस्क वेन पर फोकस हो जाता है।
एक मिनट, तो मतलब कहानी के बीच में ही लेखिका ने कैमरा घुमा दिया। अब हम सब कुछ उस आदमी की नजरों से देख रहे हैं जिसके असली होने पर ही शक है। ये तो पाठक को और ज्यादा उलझा देगा।
यही तो कमाल है। सरपेल जानबूझकर हमें कैसेंड्रा के नजरिए के आरामदेह दायरे से बाहर फेंक देती हैं। अब हमें इस वेन के अतीत के बारे में पता चलता है जो खुद सदमों, अस्थिरता और धोखे से भरा हुआ है। वो एक ग्रेनिट की तरह है जिसकी अपनी कोई असली पहचान नहीं है। वो लोगों की जरूरतों और उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है।
तो फिर कैसेंड्रा के साथ उसका रिश्ता कैसा दिखता है उसकी नजर से? क्या वो सच में उससे प्यार करता है या सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है?
इस नजरिए से कैसेंड्रा का वो चमत्कारी पुनर्मिलन एक बहुत ही उलझा हुआ, सहनिर्भरता वाला रिश्ता लगने लगता है। हमें पता चलता है कि ये वेन जानता है कि कैसेंड्रा उसमें क्या देख रही है। वो उसके दर्द को समझता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उस दर्द से हमदर्दी रखता है या वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उपन्यास हमें इसका भी कोई सीधा जवाब नहीं देता, वो बस रहस्य को और गहरा कर देता है।
अब पाठक भी ठीक कैसेंड्रा की तरह ही शक और अनिश्चितता के भंवर में फंस जाता है।
बिल्कुल।
इस उपन्यास का नाम द फरोज यानी लकीरें है। अब तक की बातचीत से मुझे लग रहा है कि इसका मतलब सिर्फ समुद्र की लहरों से नहीं होगा। ये लकीरें और कहाँ हैं?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये लकीरें हर जगह हैं। ये समुद्र की लहरों की लकीरें हैं जो शायद वेन को बहा ले गईं। ये माँ के माथे पर चिंता से बनी गहरी लकीरें हैं, लेकिन सबसे गहरी लकीरें तो कैसेंड्रा के दिमाग में हैं। जैसे किसी पुरानी रिकॉर्ड की सुई एक ही खरोच में अटक जाती है और एक ही धुन बार बार बजाती है, उसका दिमाग भी उसी एक हादसे की लकीर में फंस कर रह गया है। वो चाहकर भी उस लकीर से बाहर नहीं निकल पाती।
तो ये उपन्यास दुख के बारे में एक बहुत ही अलग बात कह रहा है। ये उन दुख के पांच चरणों वाली थ्योरी की तरह नहीं है जहां आप एक पड़ाव पार करके दूसरे पर पहुंचते हैं और अंत में उससे बाहर निकल आते हैं।
बिल्कुल नहीं, ये उपन्यास कहता है कि गहरा दुख कोई पड़ाव नहीं है जिसे पार कर लिया जाए। ये एक स्थायी अवस्था है, एक मौसम है जिसमें आपको जीना सीखना पड़ता है। ये आपकी हकीकत को हमेशा के लिए बदल देता है और कहानी की बनावट भी इसी बात को दर्शाती है। ये कहानी एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ती, इसमें हादसे, डूबने और पहचान की अदला बदली के दृश्य बार बार लौट कर आते हैं अलग अलग रूपों में।
तो ये हमें महसूस कराता है कि सदमा एक ऐसी चीज है जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस लौट कर आती रहती है।
ठीक, यही।
और मुझे लगता है कि ये हकीकत को बदलने का यही आइडिया कई बड़े मुद्दों को जन्म देता है इस किताब में, जैसे यादें। अगर कैसेंड्रा की यादें ही भरोसे के लायक नहीं है तो फिर सच क्या है?
यही पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम अपनी यादों पर भरोसा ही नहीं कर सकते। सरपेल हमें दिखाती हैं कि यादें गुजरे हुए कल का कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, वे कहानियां हैं जो हमारा दिमाग खुद को सुनाता है ताकि वो दुनिया को समझ सके। खासकर किसी बड़े सदमे के बाद हमारा दिमाग उस घटना को समझने के लिए कई अलग अलग कहानियां गढ़ता है। कैसेंड्रा की वो अलग अलग यादें झूठ नहीं हैं, बल्कि उसकी भावनात्मक सच्चाई के अलग अलग हिस्से हैं।
और दूसरा बड़ा मुद्दा शायद पहचान का है। किरदारों की पहचान इस बात से नहीं बन रही कि वो कौन है, बल्कि इस बात से कि उन्होंने किसे खो दिया है।
बहुत अच्छी बात कही आपने, इसे कहते हैं अनुपस्थिति से बनी पहचान। कैसेंड्रा की पूरी जिंदगी उसके भाई की गैर मौजूदगी की एक प्रतिक्रिया है। उसकी माँ की पहचान अब बस एक ऐसे बच्चे की माँ के रूप में है जो खो गया है। उनकी जिंदगी का केंद्रिक खालीपन बन गया है और वो सब उसी खालीपन के चारों ओर घूम रहे हैं।
तो कहानी का अंत कैसे होता है? क्या कोई रहस्य खुलता है? क्या हमें पता चलता है कि वेन के साथ असल में क्या हुआ था, या ये दूसरा वेन कौन है?
नहीं, उपन्यास कांत किसी पारंपरिक समाधान पर नहीं पहुंचता। वो किसी रहस्य से पर्दा नहीं उठाता। अंत में डूबने, हादसों और पहचान की अदला बदली की तस्वीरें फिर से लौटती हैं, जो इशारा करती हैं कि यह चक्र शायद कभी खत्म नहीं होगा। लेखिका जानबूझकर पाठक को उसी गहरी अनिश्चितता में छोड़ देती है जिसमें कैसांड्रा अपना पूरा जीवन जी रही है।
तो मतलब पूरा उपन्यास इस एक बात पर टिका है कि हमारे दिमाग के लिए जो महसूस होता है वो कभी कभी क्या हुआ था उससे ज्यादा असली बन जाता है। हमारी यादें भरोसेमंद गवाह नहीं बल्कि कहानीकार हैं।
बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सबक है। उपन्यास ये नहीं कह रहा कि दुख से बाहर निकलो, वो कह रहा है कि दुख एक मौसम की तरह है जिसे आपको जीना सीखना पड़ता है। इसका कोई दरवाजा नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकें। इसका मकसद जवाब देना नहीं है बल्कि उस अनुभव के लिए गहरी हमदर्दी पैदा करना है। यह सिखाता है कि कभी कभी किसी घाव से उभरने का मतलब उससे आगे बढ़ना नहीं बल्कि उसके भूत के साथ जीना सीख लेना होता है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी तथ्यात्मक सच्चाई से ज्यादा शक्तिशाली और वास्तविक भावनात्मक सच्चाई होती है।
और ये कि किसी गहरे दुख से उभरने का अर्थ हमेशा जवाब मिलना नहीं बल्कि उस अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेना है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।